दिव्या उपन्यास का अति महत्वपूर्ण खंड दारा। मद्र गणराज की दक्षिण पूर्वी सीमा शत्रुद्ध नदी थी। नदी के पश्चिम पत्तन पर दास व्यवसायी श्रेष्ठ प्रतुल का सार्थ गत संध्या से डेरा डाले था। अन्य दो व्यवसायी सार्थ भी नदी पार करने के लिए सौलिक राजपुरुषों की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। मद्रगण की सीमा नदी लाख कर दूसरी ओर जाने से पूर्व सौलिक राजपुरुष व्यवसायियों के द्रव्य की प्रतीक्षा कर राजस्व शुल्क उगा रहे थे। श्रेष्ठ प्रतुल ने शुल्क स्थान के प्रधान राजपुरुष के साथ रात्रि में अपानक और भोजन किया था। श्रेष्ठ के इस मार्ग से प्राय आते जाते रहने से राजपुरुष से उसका परिचय और साक्ष्य था। 7 मास पूर्व दक्षिणापथ से कृष्णवर्ण दास लेकर मद्र आते समय पतुल राजपुरुष को सिंघल के मुक्ता की एक अंगुली भेंट की थी। मित्रता और रात्रि के अपानक का शैथिल्य होने पर भी सौलिक को मद्र के राज नियमों का उपाचार तो पूरा करना ही था। दास व्यवसायी श्रेष्ठ प्रतुल 7 मास पूर्व दक्षिणापथ के 133 दास दासी लेकर आया था। लौटते समय उसके पास 165 दास दासी थे। वे सभी नए थे, कुछ यवन, कुछ कश्मीरी, कुछ उत्तरापथ के गौर वर्ण और अधिकांशतः दार्व प्रांत की गौण वर्ण चपल नेत्र ललित अंग दासियां थी। सीमांत के प्रत्येक युद्ध के पश्चात दास व्यवसाय के लिए अनुकूल अवसर होता था। सौलिक के राजपुरुष ने प्रत्येक दास दासी के क्रय का ताड़पत्र देखकर निश्चय किया कि उनमें से कोई अपहृत अथवा अपने स्वामी की सेवा से भागा हुआ दास दासी तो नहीं, अथवा कोई द्विज संतान तो नहीं। मद्र गणराज की राजमुद्रा धारण के अधीन सौलिक ने ताड़पत्र देखकर प्रधान सौलिक का ध्यान आकर्षित किया। 7 मास पूर्व के लेख के अनुसार श्रेष्ठ प्रातुल मद्र गणराज की सीमा में एक पत्नी, 6 प्रतिहारी दास और परिचर्या के लिए 1 दास और 1 दास बालक सहित बिक्री के लिए 135 दास दासी लेकर प्रवेश किया था। अब श्रेष्ठ 2 पत्नियों सहित सीमा लाघना चाहता है। परिचर्या के लिए कृष्णदास के स्थान पर अब गौर दास है। श्रेष्ठी ने परिचर्या के लिए लाए कृष्णदास को मद्र की सीमा में बेचा है। परिचर्या के दास का शुल्क उस समय नहीं लिया गया था। उसके बेच दिए जाने पर उसका शुल्क एक निस्क मिलना चाहिए। मातुल ने हंसकर उत्तर दिया, कर्तव्य तात्पर्य आर्य का वचन सत्य है, मेरी ही भूल थी, आप एक निस्क और ले लें। मुद्राधारी सैनिक ने प्रधान सौलिक को धीमे स्वर में पुनः संबोधन किया, श्रेष्ठी की द्वितीय पत्नी क्रीत दासी है अथवा विवाहिता पत्नी। यह रहस्य संबोधन सुनकर श्रेष्ठ प्रतुल ने विनोद से हंसकर उत्तर दिया, आयुष्मान की सतर्कता स्तुत है, परंतु श्रेष्ठी एक निस्क के लिए चोरी नहीं करता। भद्र द्विज कुलों में दास दासियों का क्रय विक्रय लेख के साक्ष्य द्वारा होता है। कन्यादान और पत्नी ग्रहण केवल मुख के शब्द और अदृश्य देवता के साक्ष्य से होता है, उसके लिए ताड़पत्र का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भद्र, त्वयं च पत्नी अहम च भरता, जम्मू दीप के आर्य की यही कर्मादित पद्धति है। मैंने सांगल के श्रेष्ठ कुलज वाणिक नैमित्तिक की कन्या के रूप और गुण पर मुग्ध होकर उसे पत्नी रूप में ग्रहण किया है, और देखो कुलवती का गुण, वह मेरी वंश वृद्धि का अंकुर इतने शीघ्र अपने शरीर में धारण किए है। मेरी प्रथम युवा पत्नी 3 वर्ष के सहवास से भी बंध्या ही है, इसी से यह विवाह। पातुल हंसने लगा, सौभाग्य हो, वृद्धि हो। प्रधान सौलिक ने भी हंसकर उत्तर दिया, परंतु श्रेष्ठी की सौभाग्यवती पत्नी मद्र की शीतल स्वतंत्र भूमि छोड़कर राजाओं के उत्पीड़ित उष्ण देश में जाकर क्या भाग्यवती होगी। इस अबोध को राजाओं से उत्पीड़ित देश की अवस्था और वहां की उष्णता का ज्ञान अस्तु मनुष्य देव की लीला का साधन मात्र है। श्रेष्ठ शुल्क स्थान की पांथशाला के आलिंद में पौढ़ की पत्नी अंजना के साथ आस्तरण पर बैठी दिव्यादास व्यवसायी पातुल और सौलिक का विनोद विवाद सुन रही थी। एक अंकुश सा उसके हृदय में चुभा। मद्र की स्वतंत्र मातृभूमि, प्यारी सांगल नगरी, जहाँ उसने अल्हड़पन के खेल खेले, उससे सदैव के लिए छीन कर उसे ले जाया जा रहा है। इस समय विरोध का एक चित्कार उसे दास व्यवसायी के पास से दासत्व से मुक्त कर सकता है, परंतु फिर वह कहाँ जाएगी? उसके लिए स्वतंत्रता कहाँ है? उसके लिए शरण और कहाँ है? उसके संभावित संतान के लिए शरण और स्थान कहाँ है, उसके लिए जीवित रहने का अवसर नहीं, उसके लिए स्वतंत्रता कहाँ। उसने सुना पौढ़ प्रातुल राजपुरुष को उत्तर दे रहा था, आर्य भूमि और देश जीवन प्रेम से संबद्ध है, व्यक्ति जहाँ जीविका पाता है वही उसका देश है, और क्या प्रेमी का प्रणय कुछ भी नहीं। प्रणय शब्द दिव्या के लिए त्रास और आशंकामय हो गया था, इस शब्द का अर्थ था पृथ्वीसेन की प्रवंचना। पौढ़ प्रतुल से भी उसने त्रास ही पाया था, बेटी संबोधन करके भी उसने निर्दयता ही की थी। उसने दिव्या की एकमात्र आलंब धात्री को छीन कर न जाने कहाँ लोप कर दिया। उस संध्या कक्ष में पृथक मुदी जाने के पश्चात धाता का कोई चिन्ह अथवा संकेत न मिला। धाता के लिए विलखने पर प्रातुल ने स्नेह का नाट्य कर धीरज धरने के लिए कहा। अंजना बार बार विस्मय प्रकट करती, हाय वह छलिया जाने कहाँ चली गई। असहाय दिव्या ने अनुमान कर लिया, अम्बा संभवतः डर कर प्रसाद लौट गई और वह मौन रह गई। प्रातुल के प्रत्यक्ष स्नेहमय व्यवहार के पीछे बंदी को संतुष्ट सुरक्षित रखने की छलना और सतर्कता प्रतिक्षण छलकती रहती थी। दिव्या समझती थी प्रातुल की सहृदयता केवल उसे मद्र की सीमा से सुरक्षित पार ले जाने तक है। मद्र की सीमा के परे दासत्व और उत्पीड़न का पास उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह मौन रहकर अपनी अनुमति से उस पास में बध रही है। पुनः आवेश कंठ तक आया, एक चित्कार से एक शब्द से वह उस यंत्रणा से रक्षा पा सकती है, परंतु वह जाएगी कहाँ, सांगल में तात के प्रसाद में, असंभव। उत्पीड़ित होकर भी वह शरण पाए है, आश्रण हो वह कहाँ जाएगी। वर्षा से गृहहीन स्तंभ की ओट पाने का ही यत्न करता है, उसके नेत्र भीग गए और वह मौन रह गई। सोचा प्रातुल और अंजना भी उसके दुर्भाग्य का रहस्य जानते हैं, इसलिए स्थूल बंधनों का उपयोग करना आवश्यक नहीं समझते। स्थूल बंधनों से कहीं अधिक दृढ़ परिस्थिति के सूक्ष्म अदृश्य बंधन ही उसे बांधे हैं। प्रधान सौलिक की अनुमति पाकर श्रेष्ठी प्रातुल का सार्थ शत्रुद्धि की धारा के तट पर छिछले जल में खड़े एक बहुत बड़े बेड़े पर बैठा। नाविकों ने बेड़े को धकेल कर धार की ओर किया और फिर बेड़ा स्वयं ही तीव्र गहरी धार में बह चला। नाविक बेड़े को दूसरे तट की ओर ले जाने के लिए मुख से शब्द करते हुए पूरी शक्ति से डांड चलाने लगे। दिव्या के कानों के लिए डांड में एक साथ बल लगाने के प्रयोजन से नाविक का समृद्ध कोलाहल मद्र के विषय में दूसरे यात्रियों का वार्तालाप और नेत्र के लिए नदी की धार के दोनों ओर फैल सिकता के विस्तृत तट, नदी की गहरी तीव्र फैन उछलाती नीली लहरें सब निरर्थक थे। वह सोच रही थी अपने जीवन की नौका को उसने घटनाओं की तीव्र धारा में स्वयं ढकेल दिया है, वह जाने कहाँ जाकर रुकेगी। नदी की धारा में बेड़ा सैन्य सैन्य पूर्व की ओर बढ़ रहा था। मद्र की भूमि दूर हो रही थी, उस भूमि से प्रताड़ित होकर भी उसके बिछोह से एक उच्छ्वास मन में उठ आया। वह उच्छ्वास दिव्या के ओठों पर मां शब्द की ध्वनि प्रकट होना चाहता था। उस भूमि में जन्म देने वाली माँ के जीवित रहते भी क्या वह इस प्रकार विवश हो चली जाती। और फिर दूसरी माँ अम्मा धाता का रूप कल्पना से साकार हो उठा। सभी कन्याएं एक दिन माँ की गोद छोड़कर ससुर गृह जाती हैं, परंतु उसके मन में पति के घर जाने की संतावना और उत्साह रहता है। पति के प्रसंग से कल्पना में पृथ्वीसेन जाग उठा, ओठों को दांत से दबाए। दिव्या के विचार ने कहा, वंचक पृथ्वीसेन और दास व्यवसायी प्रतुल में क्या अंतर। आशंका से शरीर के रोम सिहर उठे, जैसे नदी तीर की सिकता उसके दांतों तले आ गई हो। उसे ठुकरा देने वाले मद्र की ममता को वह क्या करे। दीर्घ निश्वास ले उसने नेत्र मूंद लिए। दास व्यवसायी श्रेष्ठी प्रातुल की पत्नी अंजना दिव्या के प्रति सहृदय थी। चारों दासों के मूल्य से बहुमूल्य दिव्या के आभूषण अंजना ने अपना लिए थे। दिव्या ने इस विषय में एक शब्द भी ना कहा था। दिव्या के इस मौन उदारता के प्रति अंजना कृतज्ञता प्रकट किए बिना न रह सकी। दिव्या के कंठ की मुक्तमालाएं, रत्नजड़ित अंगद और काशेय वस्त्रों से अंजना का निश्चय था कि युति अवश्य ही उच्च सामंत वंश के प्रसाद में पली है। उसका गर्भ देख कर वह यह भी जान गई किसी कारण वह स्वेच्छा से दुख और दैन्य का मार्ग स्वीकार कर रही थी। कुछ दिव्या के प्रति सहानुभूति और कुछ कौतूहल से अंजना ने उससे शंख स्थापित कर उसका रहस्य जानना चाहा। दिव्या ने कातरता से संक्षेप में उत्तर दिया, मैं अभागी वंचिता हूँ। मेरे पृथ्वीग्रह में सब कुछ था, परंतु मेरे लिए स्थान न था। इस अवस्था में मेरा कुल मेरी सहायता नहीं कर सकता। आश्रय की खोज में भटकती तुम्हारे स्वामी के हाथों पड़ गई हूँ। अब देव की जो इच्छा हो। श्रेष्ठी पातुल की आशा थी कि दिव्या को मगध के समृद्ध रसिक ग्राहकों के हाथ बेचकर ऊंचा मूल्य पाएगा। ऐसी रूपपति लावण्यमयी दासी के लिए 400 स्वर्ण मुद्रा भी अधिक न थी। परंतु सूरसेन देश की मथुरापुरी नगरी पहुँचते पहुँचते दिव्या की अवस्था यात्रा योग्य न रही। उसे किसी प्रकार का कष्ट सहने का अभ्यास न था। रथ पर चलने में भी उसे कष्ट होता था। पथ असम होने पर तो उसके प्राण निकल जाने की आशंका होने लगती। यदि प्रसव हो जाने पर संतान को दूर कर 4-5 मास तक खिला पिला कर उसे पुष्ट कर बेचा जा सकता तो कोई भी रसिक उसके लिए नेत्र मूंद कर दोनों हाथों से स्वर्ण दे देता। परंतु एक दासी के ही कारण वह कितने समय तक सूरसेन में टिका रह सकता था। सार्थवा में नए 165 दास दासियां को दीर्घ समय तक व्यर्थ भरण पोषण का बोझ। इस विलंब के कारण वह चैत्र मास में दक्षिणापथ के दासों के मेले में पहुंचना भी चाहता था। दास दासियों के रूप में मनुष्यों का व्यवसाय करते रहने के कारण प्रातुल अनेक सृष्टियों के मनुष्य के शरीरों और स्वभावों की सूक्ष्मता से उसी प्रकार परिचित था जैसे कुम्हार अनेक स्थलों की मिट्टी, उससे बने पात्रों की उपयोगिता और मूल्यों से अवगत रहता है। पाटलिपुत्र में उसके घर पर 4 दासियां थी। इन दासियों का केवल काम गृहसेवा या स्वामी के लिए वृत्ति कमाना था। वे प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थीं। प्रातुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतान बेचता था। अभ्यस्त हो जाने के कारण वे दासियां संतान वियोग का दुख सहज ही सह जाती। एक संतान का वियोग होते समय भी 2-3 संतानें उनके समीप रहती। पौष्टिक भोजन से उनके प्रसव की निर्बलता तुरंत दूर हो जाती। परंतु दिव्या से ऐसी आशा न कर सकने के कारण प्रातुल और भी चिंतित था। वह जानता था कि प्रसव इस युवती का लावण्य दीर्घ समय के लिए हर लेगा। इसकी संतान इससे छीन लेने पर इसे जीवित रखना कठिन होगा। दास दासियों को कोड़े की मार या भूख से वश किया जा सकता है, परंतु जो स्वयं ही मृत्यु के लिए आतुर हो उसका क्या उपाय। अनेक स्थितियों में बल प्रयोग से कुछ नहीं हो सकता। प्रातुल ने दिव्या के शरीर से पाए बहुमूल्य आभूषणों से ही संतोष कर उसे मथुरापुरी में ही निपटा देने का निश्चय किया। श्रेष्ठी प्रातुल ने मथुरापुरी के दास व्यापारी भूधर से अपनी यात्रा की असुविधा वर्णन कर कश्मीर देश की एक गर्भवती परंतु अत्यंत लावण्यमयी दासी बेचने का प्रस्ताव किया। प्रातुल ने कहा, पुष्पुर के एक सामंत प्रसाद से उसने इस दासी दारा को 150 स्वर्ण में क्रय किया है। निश्चय ही वह उसे मगध के राजप्रसाद में 400 स्वर्ण मुद्रा में बेच सकता था, परंतु यात्रा की असुविधा है और दासी कोमलांगी है। भूधर ने पैनी दृष्टि से दारा को सिर से पैर तक देखा और 20 स्वर्ण मुद्रा देना स्वीकार किया। क्या कहते हो मित्र, अत्यंत विस्मय से नेत्र फैलाकर प्रातुल ने ऐसे अनसुने अन्याय का विरोध किया। क्या तुम उसके अवयव का लास्य, उसका चंपा कलीसा वर्ण नहीं देखते? गर्भणी होने के कारण मालिन है तो क्या यह नहीं देखते कि एक के मूल्य में 2 जीव पा रहे हो? और फिर यह मालिनता कितने काल तक रहेगी? माणिक पर धूल रहने से क्या वह माणिक नहीं रहता? उसके नेत्र और वर्ण भूधर के कान के समीप मुंह ले जाकर प्रातुल ने कहा, शुद्ध रक्तता को लजाते हो, किस राजकुमारी से कम है। मैं जानता हूँ 4 मास पश्चात तुम उसके 500 स्वर्ण मुद्रा पाओगे। अपने श्वेत शाम समरस से अंगुली चलाते हुए भूधर ने उत्तर दिया, मित्र वही सब देख रहा हूँ। गोधन अश्वधन नहीं, मनुष्यों का ही व्यवसाय करता हूँ। उसकी जाति देखते हो, पर्यक परपली है, द्विज कन्या है मित्र, निश्चय गर्भणी है, वह भी प्रथम गर्भ। तिस पर यह दीर्घ यात्रा, यदि फिसल गई तो 20 मुद्रा भी गए। प्रातुल के कान के समीप मुंह ले जाकर भूधर ने फिर कहा, मित्र अजात शत्रु और विदत्त का समय गया। अब पुष्पमित्र का शासन है और सूरसेन का उपारिक है उग्र रवि शर्मा। किसी ब्राह्मण ने इसके रूप पर मुग्ध होकर अपने परिवार की वधु कह दिया तो वृद्धावस्था में राजदंड भोगते भोगते लुंजा हो जाऊंगा। तुम इसे मगध ले जाकर व्यर्थ राजदंड में फंसोगे। दासी दारा अभी प्रसव वेदना से मुक्त न हो पाई थी कि देव ने उसको दास व्यापारी भूधर के द्वार पर भेज दिया। याज्ञिक पुरोहित चक्रधर की पत्नी एक बालक प्रसव करते ही विषम ज्वर से पीड़ित हो गई। वैद्य ने रोगी माता का स्तन नवजात शिशु को देने का निषेध किया। घर की गया का दूध निर्बल बालक पचा न सकता था। पुरोहित चक्रधर ने सुना कि दास व्यवसायी भूधर के यहाँ सद्य प्रसूता दासी है। वह 50 स्वर्ण मुद्रा में दासी दारा को उसकी संतान सहित क्रय कर ले आया। अपनी संतान गोद में लिए दारा ने पुरोहित पुत्र को भी हृदय से लगा लिया। उसने देवताओं की कृपा के लिए धन्यवाद दिया कि वह अपनी संतान का पोषण कर सकेगी। अपनी ही संतान जैसे एक और नवजात शिशु के प्राण बचा सकने के सुख से उसने अपार संतोष अनुभव किया। विषम ज्वर से मुक्ति पाने पर द्विज पत्नी के स्तन सूख गए। दारा दोनों नवजात शिशुओं को हृदय से लगाकर उनमें अंतर अनुभव न करने का यत्न करने लगी, परंतु दारा वह संतोष पा न सकी। शीघ्र ही उसकी अनुभूति बदल गई। स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तन पान कराकर वह अपने पुत्र को स्तन दे। वह आज्ञा शूल की भांति दारा का हृदय भेद गई, परंतु आज्ञा पालन के अतिरिक्त उपाय न था। द्विज पुत्र को स्तन पान करा देने के पश्चात उसके अपने पुत्र शाकुल के लिए दूध शेष न रहता। अपनी संतान को क्षुधित देख दारा का हृदय रो उठता। वह द्विज पत्नी की दृष्टि की ओट होकर अपनी संतान को स्तनपान कराने का अवसर खोजती रहती। वह अपने स्तन के दूध को की चोरी करने लगी। द्विज पुत्र के क्षुधित होने पर उसके स्तन दूध रहित होते। अपनी संतान के क्षुधित रहते अपना स्तन द्विज पुत्र को देना दारा के लिए असहाय यंत्रणा बन जाता। स्वामी की संतान के प्रति उसके हृदय में दारुण घृणा बैठ गई। छाती में दूध होने पर भी स्वामी की संतान के मुख में स्तन देने से दूध उतर ही ना पाता। द्विज पत्नी अपनी संतान के प्रति दासी की कुटिलता, निर्दयता और चौर कर्म से अत्यंत क्रुद्ध हुई। उसने दारा की कठोर प्रताड़ना की। उसे सदमार्ग पर आते न देखकर उसकी संतान छीनकर अत्यंत बेच देने की भत्सना की। उसने आज्ञा दी, स्वामिनी की संतान को अपने स्तन से संतुष्ट किए बिना वह अपनी संतान को न छुए। दारा का पुत्र एक फटे वस्त्र पर आलिंद में पड़ा रहता। स्वामी की संतान को गोद में लिए वह सजल नेत्रों से अपने बालक की ओर देखती रहती। दारा को ऐसी अवस्था में देखकर स्वामिनी क्रोध से क्षुब्ध हो जाती। अपने संतान के प्रति दासी के मानसिक विश्वासघात के लिए वह उसकी घोर प्रताड़ना करती। स्वामी की संतान के मुख में अपना स्तन दिए अपने पुत्र को क्षुधार्त देखते रहना दारा के लिए असहाय था। वह उस ओर दृष्टि हटा लेती। ऐसी अवस्था में दूध न पाने के कारण द्विज पुत्र धात्री का स्तन अपने दांतहीन जबड़े से तोड़कर छटपटा उठता। चतुर द्विज पुत्र ऐसी परिस्थितियों का उपाय जानती थी। वे दारा के पुत्र शाकुल को उसके सम्मुख लाने की आज्ञा देती। अपने पुत्र के प्रति ममता की अनुभूति से दारा के स्तनों में दूध और नेत्रों से जल बह जाता। उससे स्वामी की संतान तृप्त होती। यह क्रिया प्रति प्रातः संध्या पुरोहित चक्रधर के आंगन में बधी गाय के साथ भी होती। गोदेवहन से पूर्व बछिया को गाय के स्तनों पर छोड़ दिया जाता। अपने स्तनों पर अपनी संतान के मुख का स्पर्श पाकर जब गाय स्तनों में दूध ठेल देती, बछिया को गले की रस्सी से खींचकर गाय के खूंटे में बांध दिया जाता और उसका दूध द्विज पत्नी या दासी पात्र में ले जाती। दारा इस आयोजन की ओर निष्पलक देखती रहती। द्विज पत्नी दारा की प्रत्याणा कर उपदेश देती, तू कितनी दुष्ट और कुटिल है। अपने पाप का फल इस जन्म में दासी होकर भोग रही है और उस जन्म में स्वामी के प्रति विश्वासघात के पाप का दंड जाने कितने जन्म पर्यक भोगेगी। पशु होकर भी वह गाय तुझसे अधिक धर्मशील है। कोई उत्तर न देकर स्वयं दारा ही अपनी तुलना गाय से करती। केवल उसके गले में रस्सी न होने पर भी वह गाय की भांति विवश थी। वह अनुमान करती कि गाय का हृदय भी अन्याय की भावना और प्रतिहिंसा अनुभव करता है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों, वह स्वयं ऐसा क्यों नहीं करती है। दासी होकर अपने शरीर को अपना समझना उसके विश्वास में पाप था, परंतु वह विवश थी। वह सोचती उसकी संतान को जीवन के लिए पोषण का अधिकार क्यों नहीं। प्राय मौन रहने के कारण उसकी कल्पना बावली हो उठती। यदि उसके शाकुल का जन्म इन परिस्थितियों में न होकर पृथ्वीसेन के प्रसाद में होता तो उत्सव और समारोह से दिशाएं गूंज उठती। पृथ्वीसेन की संतान होने से शाकुल के लिए सभी कुछ प्राप्त होता और उसकी अपनी संतान होने से शाकुल के लिए कुछ प्राप्त नहीं, जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं। वह जैसे पात्र से झलक गई, जल की बूंद की भांति है जो केवल सूख कर समाप्त हो जाने के लिए ही है, परंतु वह अपनी संतान को दुष्ट पृथ्वीसेन की संतान स्वीकार न करेगी। उसके लिए उसने जो संभव था किया और करेगी। दारा की कल्पना अतीत की ओर चली जाती। उसके अपने जन्म के समय भी उसकी माता रोगग्रस्त हो गई थी। उसका पोषण भी धात्री के स्तन से हुआ था। क्या यह उसी कर्म का फल है? बौद्ध श्रवण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही दुख पाता है, परंतु मेरे बच्चे का क्या कर्म है? अभी तो उत्पन्न ही हुआ है, उत्पन्न होने से पूर्व ही उसका कर्म फल फूट गया। वह भी नहीं जानता कि किस कर्म का दंड भोग रहा है, वह यह भी नहीं जानता कि वह दंड भोग रहा है। हे देवता, अपना अपराध या दुष्कर्म जाने बिना यह अबोध बालक दुष्कर्म से बचने का निश्चय कैसे करे? यदि दुष्कर्म मैंने किया है तो दंड और भोग मेरे लिए प्रस्तुत हो। मेरा पुत्र क्यों क्षुधा पीड़ित हो? मैंने कौन दुष्कर्म किया है? क्या पृथ्वीसेन से अनुराग पाप था? क्या गर्भ धारण करना पाप है? संपूर्ण सृष्टि गर्भ धारण करती है, मैंने ही किया है। क्या केवल दुष्समाज की आज्ञा के बिना गर्भ धारण किया इसी कर्म का यह फल है? क्या कर्म फल देने वाला दुष्समाज ही है? पुरोहित चक्रधर के द्वार पर भिक्षा के लिए उपस्थित होने वाले के रूप में काशकाय चिविरधारी श्रवण उपदेश दे जाते। कर्म और जीवन केवल दुख की श्रृंखला है, सुख केवल अस्थायी अनुभूति है। दारा की कल्पना पुनः उस अपने अतीत की ओर चली जाती। श्रवण का वचन उसे सत्य जान पड़ता। उसने जीवन में सुख कब अनुभव किया? जब भी अनुभव किया वह केवल उड़ते हुए मेघों की छाया की भांति था। उसका कला की देवी सरस्वती पुत्र निर्वाचित होना, पृथ्वीसेन के अंक में एकांत क्षण, उस मिलन से पूर्व और पश्चात की कल्पना, सब दुखी तो है। संसार केवल शक्तिशालियों के लिए है, दुखियों के लिए वैराग्य ही जीवन है। जीवन से मोह व्यर्थ है, परंतु साकुल का अस्तित्व तो काल्पनिक न था। मथुरापुरी के पथों और बीथियों पर भिक्षाटन के लिए विचरते भिक्षु नृत्य दुखियों को शरण का निमंत्रण देते। दुख से पीड़ित मनुष्यों, तथागत की शरण आओ, धर्म की शरण आओ, वही कृपामूर्ति तुम्हारे संतप्त संताप को दूर करेंगे। सूर्योदय से पूर्व अंधकार में आंगन में पृथ्वी पर सोई दारा के वक्ष में साकुल रो उठा। दारा ने अस्तन शिशु मुख में दे दिया। साकुल यथेष्ट स्तनपान कर सो गया। कुछ ही समय पश्चात स्वामिनी और उसके पुत्र की निद्रा भंग होने पर स्वामिनी की संतान की क्षुधा निवृत्ति के लिए एदारा की पुकार हुई। प्रातः बालक की प्रथम क्षुधा के समय धात्री के स्तन में दूध न पाकर पुरोहित पत्नी अत्यंत क्रुद्ध हुई। दारा की भत्सना कर उसे अपने धान कूटने के कठोर कार्य पर नियत कर दिया। मध्यान्ह में मिट्टी के पात्र में भोजन पाकर साकुल को वक्ष पर लिए दारा उदर पूर्ति के लिए आनंद में बैठी थी। स्वामिनी को सोया देखकर वृद्धा दासी लोमा दारा के समीप बैठकर सहानुभूति के स्वर में बोली, बेटी, स्वामिनी को क्षुब्ध कर तूने भला काम नहीं किया। आज स्वामिनी और स्वामिनी ने साकुल को कहीं दे डालने का निश्चय कर लिया है। जा भागी, स्वामिनी से क्षमा मांग ले। मिट्टी के पात्र में सम्मुख रूखा रखा अन्य वैसे ही रह गया। दारा सोचती ही रही क्या करे। ज्येष्ठ के मध्यान्ह में पुरोहित और स्वामिनी निद्रागत थे। बूढ़ी लोमा भी एक ओर जाकर सो गई। ग्रीष्म के मध्यान्ह में सब ओर हेमंत के मध्य निशा जैसी अस्तब्धता छाई हुई थी। सूर्य का प्रचंड प्रकाश दृष्टि को रात्रि के गूढ़ अंधकार की ही भांति असमर्थ किए था। झुलसा देने वाली तप्त वायु से त्रस्त नागरिक भवनों में और पक्षी तथा वानर तप्त वायु में मरमर करते वृक्षों के पत्तों की ओट में शरण पाकर विश्राम कर रहे थे। दारा अपनी संतान के छीन जाने के लिए आशंका में हथेली पर माथा रखे मौन बैठी थी। भिक्षाटन के में विलंब से लौटते किसी श्रमण की पुकार मार्ग में सुनाई दी। संसार के सतप्त प्राणियों, शांति के लिए बुद्ध की शरण आओ, धर्म की शरण आओ, संघ की शरण आओ। शरण के लिए व्याकुल दारा भिक्षा के शरण देने के निमंत्रण की अवहेलना न कर सके। मध्यान्ह सूर्य के प्रचंड ताप से मार्गों पर धूसर ज्वालाओं के रूप में धूल आकाश की ओर उठ रही थी। हु हु करती सतप्त वायु आश्रय की खोज में बनों की और दौड़ी जा रही थी। उस विभीषिका में दारा अपने साकुल को हृदय से लगाए तवे की भांति तपे। पथ पर पुरोहित घियों से निकल पड़ी साकुल को कोमल त्वचा को सूर्य से उत्तप्त बाणों से बचने के लिए दारा ने शिशु को अपने छिन्न जीर्ण मलिन उत्तरी से लपेट दिया। दारा के शरीर पर अस्तनों की पीठ पीछे गांठों से बधे वस्त्रों के एक टुकड़े और कटी पर बधे जीर्ण छिन्न मलिन अंतर्वासक के अतिरिक्त अन्य वस्त्र न था। सामर्थ्य भर द्रुत गति से चलने के कारण उसके रूखे केस बिखर गए। जीर्ण अंतरवासक पांव में उलझ उलझ कर फटता जा रहा था। सिर और शरीर पर सूर्य की किरणें चुभ रही थी। पांव तले तपे हुए पस्तर खंड थे। शरीर स्वेद से लथपथ हो रहा था। दारा का ध्यान इस ओर न था। उसके कान श्रवण के करुण निमंत्रण के उच्च घोष से पूर्ण थे। संसार के सतप्त प्राणियों, शांति के लिए बुद्ध की शरण आओ। उसकी दृष्टि घने अश्वत्थ वृक्षों के समूह के ऊपर धूल धूसरित उत्तप्त आकाश में सिर उठाए महाबोधि चैत्य के गगनचुंबी शिखर की ओर थी। 100 वर्ष से अधिक समय से वह चैत्य शिखर संसार के सतप्त के लिए अभिधर्म की करुणामयी शरण की घोषणा कर रहा था। दारा उसी ओर दृष्टि लगाए झुलसती वायु की हू हू में शरण का निमंत्रण सुनती अपने साकुल को अंक में दबाए शरण की भिक्षा के लिए दौड़ी जा रही थी। बिहार के विशाल सिंह द्वार के पट पुदे थे। पटों के दूसरी ओर करुणा और शरण का स्थान था। दारा ने सिंह द्वार से लटके विशाल घंटे को हिला दिया। ग्रीष्म की दोपहर का अस्तभ्य वातावरण गंभीर नाद से गूंज उठा। उस गुंजन से कृपा के कण बरस रहे थे। विशाल द्वार के पटों में एक छिद्र खुला। छिद्र से एक तरुण भिक्षु ने निद्रा लसित प्रश्नात्मक दृष्टि से दारा की ओर देखा। दारा आकुला उठी। भंते, शरण चाहती हूँ। बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण चाहती हूँ। तरुण भिक्षु के नेत्र अदृश्य हो गए। छिद्र मुद गया। प्रतीक्षा में कांपती हुई दारा ने द्वार के पट की से सिर टिका दिया। कुछ क्षण पश्चात द्वार के पट का एक भाग खुला। एक करुणा मूर्ति पौढ़ स्थिवर प्रकट हुआ। कंपित तन और कंपित स्वर से दारा पुकार उठी, शरण दयामय धर्म पिता शरण। शांत मुद्रा में कृपा हस्त उठाकर स्थिवर ने आश्वासन दिया, चित्त को स्थिर करो उपासिका। युवक भिक्षु ने बिहार के द्वार के सम्मुख अस्वस्थ भिक्ष के नीचे बने पत्थर के चौतरे पर एक कुशासन बिछा दिया। स्थिर ने आसन ग्रहण कर दारा को सम्मुख बैठने का संकेत कर प्रश्न से संबोधन किया, हे उपासके, चित्त का संकल्प कहो। दारा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्थिर के सम्मुख याचना की, करुणा के सागर भंते, इस अभागी संतान और इसकी माता के लिए शरण की भिक्षा। कुछ विचार के पश्चात स्थिर ने उत्तर दिया, देवी, जिन सांसारिक उपकरणों की इच्छा तुम करती हो वे बुद्ध की शरण, धर्म की शरण और संघ की शरण के मार्ग नहीं हैं। दारा कलप उठी, नहीं पिता, दासी कुछ इच्छा नहीं करती, केवल अत्याचार से शरण मांगती है। कृपा सागर, तथागत की शरण में दासी केवल अपनी संतान को पा सके। स्थिवर के शांत मुख पर करुणा की मुस्कान प्रकट हुई। वो बोले, देवी, संसार के सभी संबंध मोह हैं, दुख का कारण है। मोह से संक्लेशित चित्त शांति और शरण नहीं पा सकता। तारा स्थिवर के मुख की ओर निष्पलक देखती रह गई। निराशा ने उसकी व्यग्रता को दबा दिया। वह पुनः सहसा साहस कर बोली, धर्मपिता, दासी विनय और शील का पालन कर त्रिषाण में मोह से मुक्ति पाएगी। स्थिवर की अद्वित शांत मुद्रा की ओर कुछ क्षण निष्फलक देखती रहकर दारा ने साकुल को स्थिवर के चरणों के समीप रख अपना मस्तक चौतरे पर टिकाकर फिर याचना की,